وجعلنا النهار معاشا, اور اس نے تمہارے لیے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا. اٹھو کام کرو, سو سو کے نہ زندگی گزار دو. رات تاریک اس لیے کہ روشنی سے بچتے ہوئے آرام کر لو, نیند اچھی آئے. دن روشن اس لیے کہ سہولت کے ساتھ اپنی معاش کے کام کرو. کتنے فائدے, کیا یہ سب اتفاق سے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. غور کیا کرو, اللہ نے تمہیں معیشت کا کام دیا. اس سے بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ عموماً سونے کا وقت جو ہے وہ تو ہے ہی رات کا, کام دن کو کرنا چاہیے. اب میں یہاں اگر آپ کو یہ جملہ بول دوں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نائٹ شفٹ نہیں کرنی چاہیے. معیشت ہے ہی دن کی. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہمیں رات کے وقتوں میں آفر کرتے ہیں کام یا کچھ, یا بعض جگہوں میں میں نے سنا ہے کہ پیسے بھی ڈبل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک ریسرچ ہے, میں نے ایک کلاس میں آیت الکرسی کی تفسیر میں سنائی تھی. کہتے ہیں کہ جو انسان کی ایبلٹی ہوتی ہے نا کام کرنے کی, سیم بندہ آپ دن میں جو کام کرتے ہیں نا, ایک ورکر اگر 7 گھنٹے کام کرتا ہے, اس کے جو افیکٹس سامنے آتے ہیں نا, وہی سیم وہی بندہ چاہے دن بھر سونے کے بعد رات کو وہ کرے گا نا, تو وہ آدھی ایفیشنسی رہ جاتی ہے. مجبوریوں میں یہ لوگ کرتے ہیں, ان کو اپنی کچھ چیزوں کے لیے رکھنا پڑتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کم کرے گا, پیسے ہم نے زیادہ دینے, اور فطرت کے خلاف جائے گا نا جب انسان, تو پھر اس میں پلٹا پلٹی ہوتی ہے. کچھ کی تو مجبوری ہے, لیکن اگر صرف پیسے کی نیت سے کوئی کرے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں, میں جب سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ نماز کے لیے نہیں جاگ سکتے فجر کی, جب نائٹ شفٹ ہے رات کا کام کر رہے ہیں, ساری رات جاگ رہے ہیں, اور پتہ نہیں فجر سے پہلے ہی نیند لگ گئے. سوچنا ہے, یعنی انسان جاگے, کوئی حرام نہیں, کوئی فتویٰ نہیں, نہ ہم کو اس وقت فقہ کی کلاس پڑھ رہے ہیں, لیکن جب دنیا کے لیے جاگتے ہیں نا, پھر اللہ کے لیے بھی جاگے. اصل بات یہ, اللہ نہیں منع کرتا ہمیں خوش ہونے سے, اللہ کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن پھر آپ اللہ کو اس کا ڈیو حق دیں. ہر چیز روشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں, ابھی یہ پردے ہم بند کر دیتے ہیں تو آپ کو نیند آنے لگتی ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کسی جگہ پہ سلانے کے لیے بٹھائے گئے. یہ فطری بات ہے, موڈ کا اثر ہوتا ہے. آپ اپنے موڈ چیک کیا کریں, ایک پوری تھیراپی ہے موڈس تھیراپی. ہمارے موڈ کب بدلتے ہیں, گرمی میں موڈ کیسا ہوتا ہے, سردی میں کیسا ہوتا ہے, بہار میں کیسا ہوتا ہے, خزاں میں کیسا ہوتا ہے, یہ پورا نالج ہے. کچھ موڈز ہوتے ہیں جس میں انسان بہت فرٹائل ہوتا ہے, کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں بچوں کے پیدا ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے کچھ موسموں میں. کچھ سال کے 12 مہینوں میں 2-3 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تعلق رکھا ہے. یعنی آپ پڑھ کے دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ واقعی ولا یوہی تو نہ بشعی من علمہ, اللہ کے علم کا ایک کونا بھی نہیں ابھی لیا ہم نے. اتنی چیزیں, ہر چیز اپنی جگہ ایک سائنس ہے. کہا کیسے چل رہا ہے, جو ذات یہ کچھ کر سکتی ہے, کیا وہ قیامت کو نہیں لا سکتی؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. کبھی غور کیا تم نے کتنے مضبوط ہیں؟ کبھی آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈر لگا کہ چھتیں گر جائے گی؟ اتنی پرانی چھت ہے, کہیں میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے. خاموشی سے گرتے ہیں. آپ کسی ایسے علاقے سے گزریں جو اندرون کے علاقے کہلاتے ہیں, کہتے ہیں جی اس جگہ سے گزرے نا. چلے اور چھوڑے, جب برف باری ادھر ہوتی ہے تو سائنس لکھ کے لگا دیتے ہیں نا کہ آپ ادھر سے گزریں گے تو کیئرفل رہیں, برف گر سکتی ہے. چھت گرے تو کیا ہوگا, گردن ٹوٹ جائے گی نا. تو آپ سوچیے کہ اس آسمان کے نیچے جاتے ہوئے ہمیں کبھی خوف نہیں آیا. یہ بھی تو پرانا ہے. پرانی عمارتیں گورنمنٹ کیوں گرا دیتی ہیں کہ کہیں کسی بھی وقت وہ گر گئی اور ان کے اوپر نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو, سبعن شدادا, مضبوط, شداد شدید سے, سبعن 7. یہاں مضبوط کا لفظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں, اور اس کے کنارے اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی سیارہ ستارہ وہاں سے نیچے زمین پہ نہیں آ سکتا, اور زمین کے شیاطین یا کوئی اور ذات جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی. اور ہے گیسز, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر کے رکھ دیا. وجعلنا سراجا وحاجا, اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا. کون سا؟ سورج کا. سراج کہتے ہیں سورج کو, سورج لفظ بھی اسی سے ہے. سراجا روشن ہونے کو کہتے ہیں, اور وحاجا جو لفظ ہے وحاجا سے ہے, صفت ہے یہ اس کی, جو نور اور حرارت کا منبع ہو. یعنی روشنی اور گرمی جب دونوں ایک چیز میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو وحاج کہتے ہیں. ایک بہت ہی اچھے سپیکر ہے, آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے ان کے بارے میں کہ نہیں, امام سراج وحاج کہتے ہیں ان کو. अमेरिकन है, न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो जैसे अफ्रीकी ब्रदर है, इतनी बेहतरीन स्पीच करते हैं, इतनी इमोशनल स्पीच कि पूरे अमेरिका में, बाहर भी जाते होंगे ऑफकोर्स, जिसने फंड रेजिंग करवाना होता है इनको बुलाते हैं। और इतना प्यारा इनका अंदाज है, जॉली स्टोरीज वाला, और वाकई लाखों डॉलर जमा होते हुए देखा मैंने। एक आध मौके पे मौका मिला ह्यूस्टन में जब ये आए, बहुत लोग इनको बुलाते हैं, तो मैं हमेशा इनके नाम पे सोचती हूँ, सिराजम व हाजम। इनकी माँ ने जब इनको जन्म दिया तो उस वक्त उनको नहीं पता था कि ये वाकई एक हिदायत के लिए लोगों को बुलाने रहे होंगे। और अब देखिए ये कन्वर्ट लोग हैं, अरबी सही नहीं बोल पाते, दाल को डा बोलते हैं, लेकिन अल्लाह को उस पर भी प्यार आता होगा। लेकिन कितने लोगों को, और इन पर इतनी सख्तियाँ होती हैं अल्लाह की बना, एयरपोर्ट पर ये खुद हंसते हैं, कहते हैं जब मैं किसी जगह जाता हूँ तो मैं अपने ट्रैवलिंग टाइम में 7-8 घंटे वहाँ रोकने के भी जमा करके जाता हूँ, मुझे पता होता है कि मैं ज़रूर खड़ा किया जाऊँगा, और आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले बंदे हैं। अल्लाह ताला बस नेक लोगों और ऐसे लोग जो वाकई इस वक्त इस्लाम के लिए बग़ैर किसी तासुब के काम कर रहे हैं, फ़िरका वारियत मसलक कुछ नहीं होता इन लोगों का, ये सिर्फ लोगों को ट्रू इस्लाम दिखाते हैं, लेकिन उतनी इन लोगों के ऊपर सख्तियाँ आती हैं, कई आजमाइशें इनके ख़िलाफ़ बातें आती जाती रहती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, सोचो इतना बड़ा सूरज मैंने बनाया, सिराजम व हाजम, कितना गर्म और कितना रोशन। सिर्फ इस एक छोटे से जुमले में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत के अजीम शान निशान की तरफ इशारा किया। अब देखिए हमारी ज़मीन इस सूरज से 109 गुना छोटी है, आप ग्लोब को सोचें, हमें तो तस्वीरों में दिखता है ना, उसको छोड़े, आप यहाँ बैठे हुए पूरे दुनिया के मुल्कों को ज़रा अपने जहन में लाएं, थोड़ा बहुत तो पता ही है ना हमें, अमेरिका किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, चाइना किधर है, जापान किधर है, पाकिस्तान किधर है, आप बैठे अपने तसव्वुर में पूरे ग्लोब के जो भी मुल्क आप जानते हैं उसको लाएं और इसको 109 से मल्टीप्लाई करें, तो इतना हजम है सूरज का, रेडियस उसका, इसका कुतर ज़मीन से 109 गुना बड़ा, और इसका हजम, हजम मीन वेट या उसकी जो मास होता है, 3,33,000 गुना ज़्यादा बड़ा है ज़मीन से, और इसका टेम्परेचर 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये इस ख़ास फासले पे ना होता तो सब जल जाते, दूर होता तो दुनिया में सब ठंडा हो जाता। ज़मीन से 9,30,00,000 मील दूर है, आपका पाकिस्तान यहाँ से कितना दूर है, चंद हज़ार मील है, और ये 9,30,00,000, सोचिए ज़रा लफ्ज़ सोचिए, 9,30,00,000 मील दूर है, उसके बावजूद रोशनी इस वक्त ही देख लें आप बाहर कितनी चढ़ी हुई है, खुली आँख से आप इसको देख नहीं सकते, और गर्मी ये कि जब लू लगती है लोगों को तो पता चल जाता है कि इसको एक ख़ास फासले पे किसने रखा है, ये किसका फैसला था कि सूरज यहाँ रहे और इससे आगे ना आए, ये अल्लाह का फैसला था, उसने हर चीज़ का अंदाज़ा रखा हुआ। मैं सोचती हूँ कि जो लोग कुरान पढ़ लेते हैं फिर तो वो नेचर से मोहब्बत करने ले होंगे, सूरज चाँद को आप रोज़ ऐसे देख ही नहीं सकते, ये वही सूरज रोज़ देखते हैं। अल्लाह ताला ने इतना सर्ट सिस्टम रखा, लेकिन आप देखिए कि हमारा जो आज से 20-25 साल पहले का दीनी रुझान है उसमें कहीं सूरज चाँद सितारों की बातें नहीं दिखती, जब भी पढ़ने की बात आती है डंडे के तौर पर, अलिफ बा ता सा, अल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, 6 कलमे पढ़ो, दुरूद पढ़ो, मैंने तो बहुत कम किसी की ज़ुबान से इस तरह भी सुना कि आओ बच्चों तुम्हें नेचर दिखाते हैं, आओ सूरज को देखो और चाँद को देखें, ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक बीच में हद कर दी गई थी, ये दीन है ये दुनिया। साइंस पढ़ने को लोग बाज़ दफ़ा गुनाह का काम समझते थे, लेकिन आप इस वक्त महसूस करते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो क्या होता है, फिर आप देखिए सिर्फ सूरज हमें रोशनी नहीं दे रहा, हमारी फसलें पकती हैं इसके साथ, हमारे मौसम बदलते हैं, जानवरों का दुनिया में जो सिलसिला चल रहा है, ये सब कुछ अल्लाह ने सूरज के साथ कर दिया। और मैं सोचती हूँ कि सूरज एक रोशनी का मंबा है पूरी दुनिया के लिए, ये तौहीद की भी अलामत है कि जिस तरह एक सूरज पूरी कायनात को रोशनी और गर्मी दे रहा है ना, एक ही कुरान है, एक ही नूर है इसका जो फैलेगा तो पूरी दुनिया को रोशनी देगा, अल्लाह की ज़ात भी है, क्या आप फील करेंगे इसमें तौहीद भी है, क्या ये मुमकिन नहीं था हर मुल्क का एक अपना सूरज होता, अल्लाह ने वैसे इतने रखे हुए, आप सोलर सिस्टम यहाँ देखते ही रहते हैं अक्सर कि कितने सूरज चांद सितारे हैं, इससे भी बड़े से ही आ रहे हैं, अल्लाह की ज़ात सोचिए इतना कुछ वो चला रहा है, वो ज़ात कितनी बड़ी होगी, कहीं सूरज निकल रहा है, कहीं चांद जा रहा है, कहीं कुछ, इस पूरे निज़ाम को चलाने वाला वानजलना मिनल मौसी राति मान सज्जाजा, और हमने बरसाया बादलों से मूसलाधार पानी। मौसीरत उनकी जमा, असरा कहते निचोड़ने को। ये जो असिर की नमाज या असिर का वक्त है वो भी इसी से ही है। तो नुचड़ी हुई बदलियाँ, मौसीरा उस बदली को कहते हैं जो बस बरसने ही वाली हो। बस दफ़ा हवा में भी गीलापन महसूस होता है। अब बारिश की तरफ इशारा दिलाया जा रहा है कि आंखें खोल के देखो, तुम्हें इस ज़मीन में बारिश के निज़ाम दिखेंगे कि नुचड़ी हुई बदलियाँ उसने रखी हुई। सज्जा जा मूसलाधार, सज्जा से सा जीम जीम, किस तरीके से कायनात का निज़ाम चल रहा है तुम्हें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं बादल नहीं बरसे, हम कहते हैं बादल बरसे, बस हमारा इतना ही काम है। लेकिन वो ज़ात जो इस सारे निज़ाम को चला रही है, लिनुखरी जबी ही हब्बम व नबाता, ताकि हम उगाएं उसके ज़रिए अनाज और सब्ज़ी, व जन्नात नलफाफा और घने बागात। जन्नात तो जन्नत उनकी जमा है और अल्फाफा अल्फुन से है। किसको कहते हैं? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का घना होना। आप देखिए कि जंगलों के पास से जब आप गुज़रते हैं तो आपको खौफ आता है, लेकिन जब आप उसके अंदर चले जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। बाहर खड़े हो तो सूरज है लेकिन अंधेरा लगता है। तो जन्ना कहती उस जगह का कि जहाँ इतना सब्ज़ा हो कि सूरज की रोशनी वहाँ ना पहुँचे। और अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सारा कुछ कर करा के इतने घने जंगल बना के हमें क्या बताया कि पूछो, सोचो, गौर करो कि ये सब कौन कर रहा है, कैसे होगा। इन्ना यौमल फसल का नमीकाता, बेशक फैसले का एक मुअय्यन दिन है, एक वक्त आने वाला है कि जब होगा। शोर मचाते थे, कहते थे कब आएगी, डेट बताओ, तारीख बताओ। 2010 में आनी थी, आई तो कोई नहीं, 2011 आ गया। कितनी तारीखें कब तक लोगों ने रखी, कहा वो आएगा एक ख़ास वक्त है। कहा न मीकाता, मीकात का लफ्ज़ उर्दू में भी हम पढ़ते हैं, मीकात एहराम के साथ भी आता है लफ्ज़, यानी एक ख़ास वक्त है। अल्लाह ताला बातों से नहीं डरते, अल्लाह ताला पीयर प्रेशर में नहीं आते कि इतने लोग कह रहे हैं क़यामत आ नहीं रही तो पता नहीं आनी भी है कि नहीं, नहीं नहीं आती, जब आनी है तभी आएगी, एक ख़ास वक्त आएगी। होगा क्या, यौम युनफखु फिस्सूरि फतातूना अफवाजा, जिस रोज़ सूर फूका जाएगा तो तुम चले आओगे फौज दर फौज, फौजों की फौजें आएंगी, सब लोग निकल पड़ेंगे। किसकी फौजें, कौन होंगे, किस तरह से होंगे, इसके कई मुख्तलिफ माने किए गए। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कि ये फौजें जो आने वाली हैं क़यामत के इस धमाके के साथ, पहली बात इससे क्या मुराद है कि पहले लोग जो दुनिया से जा चुके थे उनकी फ़ौज होगी, और दूसरी बाद वालों की फ़ौजें होंगी। फिर दूसरी बात यह कि नेक लोगों की और बुरे लोगों की फ़ौजें अलग होंगी। बात कहते हैं कि मशरिक़ और मगरिब में रहने वालों की मुख्तलिफ होंगी, अरब और अजम मुख्तलिफ तरह से। अब देखें तो कितने मुख्तलिफ किस्म के दुनिया में लोग हैं ना, फौज दर फौज आए होंगे। किस तरह से उनको वहाँ लगेगा कि किस तरह से हम इन चीज़ों को जमा करके एक जगह देख रहे हैं। इसी से यौम हशर भी है ना, क्योंकि सब अगले पिछले जमा हो जाएंगे, सब कब्रों से निकल कर आ जाएंगे और किसी को किसी की होश नहीं होगी। फुतिहत समा फकानत अबवाबा, और खोल दिया जाएगा आसमान तो वो दरवाजे ही दरवाजे बंद कर रहेगा। ये इब्तदाई मरहले हैं क़यामत के, पहले आसमान फटेगा, जैसे पुराना कपड़ा चिर जाता है ना, इस तरह क़यामत के दिन आसमान जगह जगह से फटेगा और दरवाज़े बनेंगे, और ऐसे लगेगा कि मुश्किलात, आजमाइशें, तकलीफ़ें उसमें से छिन छिन कर आ रही हैं। बाज़ रिवायात में ये जो पीछे फ़ौजों की बात है, 10 मुख्तलिफ किस्म की फ़ौजों की बात की गई। एक रिवायत सुनाती हूँ अबू ज़र गफ़ारी की, फरमाए लोग क़यामत के दिन 3 फ़ौजों में तकसीम हो जाएंगे। एक फ़ौज उन लोगों की होगी जो पेट भरे हुए, लिबास पहने हुए, सवारियों पर सवार मैदान मख्शर में आएंगे। दूसरी फ़ौज पैदल लोगों की होगी जो चलकर मैदान में आएंगे, ये उससे कम दर्जे के। और तीसरी वो फौज होगी जिनको चेहरों के बल घसीट कर मैदान मख्शर में लाया जाएगा। हर बंदा अपने अमल के मुताबिक लाया जाएगा। बस उजीरा दिल जी बालू फकानत सराबा, और हरकत दी जाएगी पहाड़ों को तो वो तो सराब बन जाएंगे। ये जमे हुए पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जाएंगे, रेजा रेजा होकर हवा में बिखर जाएंगे, इनका नाम निशान तक बाकी नहीं रहेगा। आज भी मैं गुजरते हुए सोच रही थी कि अल्लाह ये अगर पहाड़ ना हो तो आधा हुसन ख़त्म हो जाए। जब हम आते हैं तो यूं पहाड़ों के ऊपर सब्ज़े के दरख्त हैं ना, ऐसे लगते हैं जैसे चौकीदार खड़े हुए हैं चारों तरफ वादी में। तो अगर ये सारे दरख्त होते लेकिन ज़मीन पे होते तो हमें इनका व्यू तो ना मिलता ना, हम इतनी दूर जाते तो देखते। पहाड़ों वाली जगहों में ये फ़ायदा होता है कि दूर की भी चीज़ें यूँ डिस्प्ले पे लग जाती हैं, जैसे स्टेज है, बैनर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, अल्लाह की ज़ात वहाँ इन पहाड़ों को खड़ा कर देती है। और सुजीरत का लफ्ज़ सारा यसीरू से है, जड़ से उखेड़ने को कहते हैं सुजीरत, और अपनी जगह से हटना। ये जब सैर करते हैं ना अपनी जगह से हट जाते हैं, आज जमे में कल कुछ नहीं। और सराबा का लफ्ज़ देखिए, सराब कहते हैं मिराज को, दूर से पानी दिखता लेकिन होता नहीं है। वही लफ्ज़ इधर भी है कि पहाड़ यूँ अपनी जगह छोड़ देंगे कि जो इंसान सोच रहा है वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इन जहन्नम खानत मिरसादा, दर हकीकत जहन्नम तो घात में बैठी हुई है। ये तो एक घात है, जानते हैं घात किसको कहते हैं? वो जगह जो शिकार को फंसने के लिए बनाई जाती है। कभी आपने किसी को शेर का शिकार करते या हिरन का शिकार करते देखा होगा, टाइगर आई बोलते हैं इसको, एक ख़ास जगह पे बैठ के देखा जाता है। जूँ ही जानवर गुजरता है शेर बस बल्कि ये घात लगाता है, कोई बकरी कोई ऐसी चीज़ जिसको उसने खाना है तो वो उसके ऊपर नज़रें गाड़ता है, जूँ ही वो आती है तो फ़ौरन चपट पड़ता है। अल्लाह ताला कहते हैं जहन्नम घात लगाए के बैठी हुई है, किसके लिए? कि जिनको इसके अंदर डालना है, किसी की निगरानी या इंतज़ार में बैठा जाए उस जगह को घात कहते हैं। हदीस में आता है कि जहन्नम को क़्यामत के दिन जब मैदाने मक्षर में लाया जाएगा तो इसको कई जंजीरें या नकेले डाली होंगी, संगलियाँ, 70,000 का लफ्ज़ आता है। क्यों? अगर इसको खुला लेके आया जाए तो ये नेक और बद सबको खा लेगी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तद उमन अदबरा वतवल्ला, ये पुकारती है। और जहन्नम अपने शिकारियों को देख कर गुर्राएगी, एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि इसकी मुर्गी की तरह की गर्दन निकल आएगी, और अल्लाह ताला इसको कहेंगे कि तुम अपना दाना चुन लो मैदान मक्चर में, तो चुन चुन के ऐसे लोगों को खाएगी जो ख़राब काम करते थे। हसन बसरी कहते हैं कि जहन्नम के पुल पर निगरान फरिश्तों की चौकी होगी, जिसके पास जन्नत में जाने की इजाज़त होगी इसको गुजरने दिया जाएगा, और जिसके पास इजाज़त ना होगी उसको रोक लिया जाएगा। बास कहते हैं कि जहन्नम का ये घात लगाना पुल सरात के ऊपर है, पुल सरात पे वहाँ से किस तरीके से रोका जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ मिरसात को देखें ना तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लफ्ज़ मिरसात जो है ना, ये रास स्वाद दाल से, रसद से, जो शख्स किसी की घात में बैठे उसको रास सिद कहते हैं, और किसी की घात में तैयार होकर बैठने को मरसद कहते हैं। कहते हैं कि अगर किसी पे अचानक टूटना हो तो अरब लोग कहा करते थे अरसदत हो, मैं उस पर अचानक टूट पड़ा। तो फिर ज़रा सारे मंजर ज़हन में लाइए, तो जहन्नम तैयार होकर बड़ी बेताबी के साथ आने वालों के लिए घात लगाए हुए हैं, छपट पड़ेगी, जहन्नमी उसमें गिरेंगे और जन्नती सलामती के साथ वहाँ से गुजर जाएंगे पुल सरात से। इसलिए नबी सल्लम ने फरमाया कि पुल सरात से जब गुजरेंगे लोग तो या रब्बी सल्लिम सल्लिम, अल्लाह सलामत रखना, अल्लाह सलामत रखना का मफहूम आता है। ये कोई खेल तो नहीं है, ये तो हमने पता नहीं क्या इसको समझ लिया, ये बहुत बड़ी हकीकत है। अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं कि जहन्नम जो है वो घात में बैठी हुई है, किसके लिए? लितौगीन मआबा, सरकशों के लिए ये ठिकाना है। तौगी की जमा तौगीन, और मआबा ठिकाना, सरकश जो सर खींचते थे हर वक्त, उनको ये होता था हम नहीं ये काम कर सकते, ये बस हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सरकश कुफार भी हो सकते हैं और ईमान वालों में से भी कुछ लोग हो जाते हैं, यानी मुसलमानों में से भी हो जाते हैं। माप मर्जे के मानों में मंजिल, जहाँ घूम फिर कर इंसान लौट जाता है। लाबसी नफीहा अहकाबा, हमेशा पड़े रहेंगे इसमें लंबा अरसा। लाबसीन लाबसुन की जमा, रहने वाला, तवील अरसा किसी जगह रहने वाले शख्स को लाबिस कहते हैं। और अहकाबा हिकबत उनकी जमा, हुकुब और हुकबुन, इसका मानी क्या होता है, इसकी बहुत सारी तफसीरें। कुछ कहते हैं 80 साल, 80 ईयर के ज़माने को हुकुब कहते हैं। हर साल 360 दिन का होता है, तो आखिरत का हर दिन 1000 दुनिया के दिनों के बराबर होगा, तो लिहाजा अहकाबा अनलिमिटेड बात है। बहुत लंबी बातें इस पर तफसीर में होती हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, ला बसीना फीहा अहकाबा ही कायना, जितने भी होंगे गुजर जाएंगे, उसके बाद निकल आएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को वो नहीं दिखता कि हम फीहा खालिदून। तो अहकाबा का क्या मुख्तलिफ मानो है कि एक हिकबा ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा, और इनको इधर से निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कहते हैं कि ज़माने दराज तक ये लोग न ठंडी लजीज हवा का जायका चखेंगे, न किसी खाने पीने की चीज़ का सिवाय हमीम और गुस्ताख के। एक हिकबा गुजरेगा तो दूसरी किस्म का अजाब शुरू होगा। ये भी मफहूम बताया गया कि एक हिकबा 80 साल को मल्टीप्लाई करते जाए एक किस्म का अजाब हो जाएगा, अब उसके यूज़ टू हो जाएंगे बिलफर्ज, तो जो ही वो हिकबा बदलेगा दूसरी किस्म का अजाब शुरू हो जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम लाबिसीना अहकाबा, कितना ही वहाँ रहेंगे। यही लफ्ज़ है जो एक हदीस में भी आता है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज नमाज का एक सजदा जिसने जान के छोड़ दिया, कोई शऊर नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, कोई गम नहीं, उसको जहन्नम में 80 हुक्बे जलना पड़ेगा। और एक हिकबा दुनिया के 80 सालों के बराबर है, 6400 साल एक सजदे के, एक रकत तो 2 सजदों से बनती है। अल्लाह की बुक ऑफ लॉ में एक फ़र्ज सजदे को छोड़ने की ये सज़ा है। जितनी जल्दी तौबा करके इंसान अपनी नमाजों पे फिक्र कर ले उतना ही ज़रूरी है। ला यज़ूकूना फीहा बर्दन वला शराबा, ना वो चखेंगे इसमें कोई ठंडी चीज़ और ना पीने की चीज़। सोचे कोई गर्मियों की दोपहर आग लगी हुई है, ना पानी है, ना आइसक्रीम है, ना बर्फ़ है, ना कुछ भी नहीं है, इल्ला हमीमा व वसाका, बजुस खोलते पानी और गर्म पीप के। रस्सा पीप और कच्चा लहू, वो गंदा मादा जो जख्मों से निकलता है, और हमीम खोलते हुए पानी को कहते हैं। कितना रहम आ रहा है, हाय बेचारों पे जुल्म हो गया, तकलीफ हो गई, फरमाया नहीं, जज़ाम विफाका, ये इनके गुनाहों की पूरी पूरी सज़ा है। अल्लाह की ज़ात किसी पे जुल्म नहीं करती, अगर पूरी सज़ा देना चाहे तो ये होगी, माफ़ कर दे उसकी मर्ज़ी है, लेकिन किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। वजह क्या, इन्नहुम कानु ला यरजून हिसाबा, ये लोग रोज़े हिसाब की तवक्को ही नहीं रखते थे, मन मौजी करते थे, कहते थे किसने देखा हिसाब, किसने कहा कि मरना है, कहाँ लिखा है, दिखाओ ज़रा, कौन कहता है, कुरान कहता है, अल्लाह की ज़ात कहती है, ये झुटलाते थे। वह कज़्ज़बू भी आयाती ना के साबा, और इन्होंने हमारी आयतों को सख्ती से झुटलाया। इतनी सख्ती थी इनके दिलों में कि सामने कुरान खुला होता था इनके, फिर भी कहते थे नहीं तुम कहते हो ऐसा नहीं होगा, कोई गलती नहीं लगी हमें। वकुल शैन अहसैना हु किताबा, हमने हर चीज़ को गिन गिन के लिख रखा, एक एक गुना इनका लिखा, एक एक हरकत लिखी, एक एक कॉल, एक एक फेल, इनकी नीयतें लिखी, इनके ख्यालात लिखे, इनके मकासद तक का रिकॉर्ड मौजूद है, कोई छोटी को बड़ी हर चीज़ मौजूद है इनके अंदर, कोई अधेर नगरी नहीं है कि कोई भी कर जाए काम तो इनको पूछा ना जाए, एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे है। देखिए दो तरह से जुल्म होता है लोगों पे, एक यह कि लोग हर काम अपने वक्त पे करें, अपनी सारी चीज़ों को अपने ड्यूज़ को पूरा करें, उनको उन लोगों के साथ मिला दिया जाए जो कुछ नहीं करते, ये उन पे जुल्म होगा जो वक्त पे काम करते हैं, जो वक्त पे अपनी हर चीज़ को क्लियर रखते हैं, वो बेवकूफ़ बन गए ना, अगर एंड पे यही कह दिया जी सारे ही एक जैसे हो गए हो, पूछा ही ना जाए बाद में, बाद में दोनों को कह दे चलो सब छोड़ दो, सबको माफ़ कर दो, ये तो बात हो गई। और दूसरी सूरत ये है कि जिन्होंने नहीं किया आप उनको भी उसके अंदर डाल दें, अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। मैं कहती हूँ कि अगर हम इस चीज़ की नियत कर लेना कि हमने जुल्म ना करना है ना करवाना है, तो आप देखेंगे अल्लाह की मदद आएगी। किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो भी काम है बस अल्लाह राज़ी हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए अल्लाह तो राज़ी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम इखलास के साथ अल्लाह का काम करते हैं ना दीन का, अल्लाह राज़ी हो जाता है, वरना वो मौका ही ना दे। लेकिन उस काम की कामयाबी, उसमें बरकत, उस काम का फैलाव, उसका दुनिया में नफ़ा देखने की जो खुशी मिलती है वो ऑर्गेनाइज होने से मिलती है। आप जो काम कर रही हैं बहुत शौक से कर रही हैं, आपकी नीयत अच्छी है, अल्लाह आपको इस पर बहुत अच्छा बदला देगा आखिरत में इंशाल्लाह। लेकिन दुनिया में क्यों आपके आंसू बने हुए हैं, ये चीज़ क्यों आपको दुख हो रहा है कि आपके पास ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, ये भी सुन्नत है। अगर नेकी के काम से सिर्फ अल्लाह की रज़ा लेनी है, जो मर्ज़ी करें, बैठ जाए अपनी तौफीक के मुताबिक, आपने तो माशाल्लाह वैसे ही पढ़ ली हैं 30 पारे, कहीं भी जाएं और बैठ के कहें कि बस अब मैं तो एक कुरान शुरू कर रही हूँ और कल वहाँ मस्जिद बना लीजिएगा और परसों वहाँ एक मदरसे का और बाद में जामिया का बोर्ड लगा के बैठे रहें, आपका शौक है आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन कामयाबी नहीं होगी। अल्लाह ने जो कामयाबी के रास्ते गैर मुसलमों को सुझाए हैं ना, वही मुसलमानों को भी सुझाए हैं। नबी सल्लम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी का काम नहीं करते थे। मसलन कल आपको कोई मशवरा देता है, कुरान पढ़ लिया, बैठो घर में बैठ के लोगों को पढ़ाओ। हाँ, पहले पढ़ाना तो सीखो, अभी तो पढ़ा है, अभी पढ़ाना सीखना है मैंने, फ़र्क है दोनों में कि नहीं? आप जहाज़ में बैठते हैं या आप जहाज़ को चलाते हैं, कुछ फ़र्क होता है दोनों में? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट से उस वक्त होती है जब वो कुरान पढ़ने को सब कुछ पढ़ना समझ लेते हैं, मैनेजमेंट का एक लफ्ज़ नहीं उनको पता होता, वो कुरान के लफ्ज़ों को कहते हैं नहीं हम एक बहुत बड़ा अच्छा इदारा बना सकते हैं, बड़े शौक से काम शुरू करते हैं लेकिन बाद में बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। लिहाजा तालिब इल्म मिसाल आप अपने ऊपर ले लीजिए कि स्टूडेंट्स स्कूलों में जाते हैं ना, तो क्या आपने अगर मैट्रिक एक स्कूल से किया तो आपको तालीम तो आ गई, तो क्या उस इदारे का निज़ाम चलाना आ गया, प्रिंसिपल क्या काम करती हैं, वो एक अलग फील्ड है। और जो धोखा खाते हैं लोग वो इसी से ही खाते हैं, मुझे आता है जी पढ़ाना, मैं कर लूँगी, मैं खुद ही चला लूँगी सारा काम, बाद में कहते हैं आज इतने थे, अब इतने, अब तो कोई भी नहीं है, वजह के मैनेज नहीं होते। तो ऑर्गेनाइज होना, कुल शे नफ्सई ना हो किताबा, अपनी ज़िंदगी में गिरा बांध ले, जितने हिसाब किताब रखेंगे, जितने ऑर्गेनाइज होंगे, जितनी जमा तफरीक करेंगे, अल्लाह की मदद उतनी आएगी। अल्लाह अपने हिसाब की बात करता है तो आप देखें कि इंसानों की क्या बात होगी, वहाँ क्या कहा जाएगा, फजूको फसाद चखो फलन नजीद अकुम, हम कुछ भी ज़्यादा नहीं करेंगे तुम्हारे लिए मगर एक चीज़, इल्ला अजाबा, चाहते तो अजाब बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़वा लो, सांपों की तादाद बढ़वा लो, बिच्छू बढ़वा लो, जो कहो कि तुम्हारे ये ऑर्डर जो हैं वो शौक से पूरे किए जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं पूरा किया जा सकता, और कुछ नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या फीलिंग आती है, कोई खुशी कोई उम्मीद है उनकी ज़िंदगी में? कोई ऐसी चीज़ है कि जो वो सोचें और वो हो जाए और उनकी मर्ज़ी की हो? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया का वक्त उन्होंने ज़ाया कर दिया, उन्होंने अपने उस चांस को बिल्कुल ज़ाया कर दिया जो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ था। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों में ना करना, हम ऐसे बेबस लोगों में हो, कल क़्यामत की आप देखिए कि बोलतियाँ बंद हो जाएंगी ना, दुनिया में इंसान कितना बोले बोले, अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुमने ये सोचा था कि हम तुम्हें वैसे छोड़ देंगे, शुतर बे मुहार अयुतरका सुदा, ऊँटों की तरह तुम्हें छोड़ दिए जाएंगे, आवारा ऊँट हो गए, जो चाहो करो, ना पूछे कोई तुम्हें। एक चीज़ छोटी सी जहन में रखिएगा कि अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, जो लोग अल्लाह के बंदों को दुख देते हैं ना, अल्लाह उनको नहीं छोड़ेगा। जैसे बच्चे को कोई दुख देना तो माँ को वो बुरा लगता है, सीधी सी बात है, माँ को कोई कुछ कह ले वो कहती खैर है, उसके बच्चे को कोई चुटकी काट देगा ना तो माँ को वो जहर लगेगा। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह के बंदों को दुखी किया, निज़ाम बदला, फिस्क फैलाया, फजूर फैलाया, अल्लाह ताला कहते हैं इनको खूब पकड़ो, फजू कुफल नजीद को मिल्ला साहबा, जहाँ तक आप तिलावत सुनते हैं और साथ साथ दुआ करें कि अल्लाह तुलना मिन हो, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करना, और हमारे अंदर जो सरकशियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, तो उसको अपनी रहमत से माफ़ कर दें और उसको ख़त्म भी कर दें।
بسم الله الرحمن الرحيم
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا